نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو، یعنی جو دوسروں کے ساتھ خیانت کرنے والا ہے وہ دراصل سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو قوتیں اور جو صلاحیتیں دی ہیں اپنی فرما برداری میں استعمال کرنے کے لیے، وہ ان پر ایک طرح سے بے جا تصرف کر کے انہیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے، اللہ ہماری تنہائیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ اندھیرے میں کیے جانے والے گناہوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ ہر حرکت سے واقف ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو اس کام کو تنہائی میں بھی نہ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض لوگ قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں ان کی نشانیاں بتائیں کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے ہی بھائی بند ہوں گے، تمہاری قوم سے ہی ہوں گے، جس طرح تم راتوں کو عبادت کرتے ہو ویسے ہی وہ بھی راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں گے، لیکن تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو تنہائی میں رب کو ناراض کریں اور باقی دن بھر کی نیکیاں اللہ تعالیٰ انہیں دھول بنا کر اڑا دیں، تو اللہ نہ کرے یہ خسارہ ہم پانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے، اپنا نفس ہے نا، اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر ظلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی جان کے بھی خود مالک نہیں ہیں، لہٰذا ہم اگر اپنے نفس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں، اگر اسے آگ کا مستحق بناتے ہیں تو یہ نفس کے ساتھ ظلم ہے۔ لیکن بہرحال اللہ نے واپسی کا راستہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ یہ والی بات، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ کسی پر الزام لگانا ایک ایسے کام کا کہ جو اس نے نہ کیا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی مومن کے بارے میں وہ بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اسے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی پیپ اور پسینے میں رکھے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، تو توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، ابھی بھی راستہ ہے، جب تک یہ زندگی ہے پلٹنے کا راستہ ہے، رب بخشنے کو تیار ہے، اپنے دامن رحمت میں لینے کو تیار ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں قبولیت کے پورے یقین کے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا، کہ کوئی شرمساری نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو بدلنے کا احساس نہیں ہے اور استغفار کی تسبیح کرتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تمہیں وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ ان آیتوں پر غور کیجئے، اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ نے کس چیز کو اپنا فضل قرار دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو، حکمت کو اور علم کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ ہم نے دولت کو فضل سمجھا، ہم نے سٹیٹس کو فضل سمجھا، اللہ ہمیں کتاب اور سنت کے علم کو اپنا فضل قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجئے۔ आगे देखें तो अल्लाह ताला मजलिस के आदाब बता रहे हैं, लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर व बेशतर कोई भलाई नहीं होती। यानी अल्लाह ताला देखें हमारी सरगोशियों को भी मॉनिटर कर रहे हैं और सरगोशी भी अल्लाह ताला सुन रहे हैं। हाँ, अगर कोई पोशीदा तौर पर सदका खैरात की तलकीन करे या किसी नेक काम के लिए या लोगों के मामलात में इसलाह करने के लिए किसी से कुछ कहे तो ये अलबत्ता भली बात है, और जो कोई अल्लाह की रजा के लिए ऐसा करेगा उसे हम बड़ा अजर अता करेंगे। यानी सदका खैरात के लिए, किसी खैर के काम के लिए और लोगों के मामलात में आपस में उनकी इसलाह के लिए हम सरगोशी कर सकते हैं, चुपके चुपके से बात कर सकते हैं और लोगों के दरमियान सुलह करा देना कितने बड़े अजर का हामिल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें ऐसे काम की खबर ना दूं जो नमाज, रोजा और सदका से भी अफजल है? दो शख्सों के दरमियान कराना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, क्योंकि दो आदमियों के दरमियान फसाद डालना दीन को मूंढने वाला काम है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हर उस बंदे की मगफिरत कर दी जाती है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता, और उस बंदे के सिवा जिसकी अपने भाई के साथ अदावत हो। इन दोनों को मोहलत दो, हत्ता के सुलह कर ले, फिर सुलह कर लें तो उनकी भी बख्शिश कर दी जाएगी। ये मुस्लिम की हदीस है 6544 नंबर की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मगर जो शख्स रसूल की मुखालफत पर कमर बस्ता हो और अहले ईमान की रविश के सिवा किसी और रविश पर चले, दरअसल हालांकि इस पर राह रास वाजे हो चुकी हो, उसको हम उसी चीज की तरफ चलाएंगे जिधर वो खुद फिर गया, और उसे जहन्नुम में झोंकेंगे जो बदतरीन जाए करार है। यहाँ जो अहले ईमान की रविश, सबील मुमिनीन का लफ्ज आया है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। लिहाजा जिस बात पर उम्मत का इजमा हो बगैर शक शुबे के उस काम को कर लिया जाना चाहिए, उसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के हाँ बस शिर्क की बख्शिश नहीं है, इसके सिवा और सब कुछ माफ हो सकता है जिसे वो माफ करना चाहे। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया वो तो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। यहाँ इन आयतों में पता चल रहा है कि हर गुनाह के बारे में उम्मीद है कि अल्लाह उसे बख्श देगा, मगर वो शख्स जो शिर्क की हालत में मरा, और शिर्क करना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला उसे माफ नहीं करते। हजरत अबू बकरा कहते हैं, हम अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर थे, आपने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े कबीरा गुनाह के बारे में ना बताऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार ये बात इरशाद फरमाई, और पहला ये कि अल्लाह के साथ शिर्क करना, दूसरा वालदैन की नाफरमानी करना, और तीसरा झूठी गवाही या झूठी बात। अल्लाह के रसूल तकिया लगाए हुए थे और आप ये हदीस बयान फरमाते हुए बैठ गए और बार बार ये बात इरशाद फरमाते रहे, हत्ता के हमने अपने दिल में कहा, काश अब आप खामोश हो जाएं। ये मुस्लिम की हदीस है। शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला इसको माफ नहीं करेंगे। हम अल्लाह के आगे, परवरदिगार, हम कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। परवरदिगार, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बंदे और रसूल हैं। या रब्बुल आलमीन, हम तेरी तौहीद का इकरार करते हैं। या रब्बुल आलमीन, यहाँ तो हमारा नाम मुसलमानों के खाने में दर्ज है, परवरदिगार तू हमें अपने हाँ भी मुआहिद लिख ले। या इलाही, हमें तौहीद पर जिंदगी अता फरमा और तौहीद ही पर मौत अता फरमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो लोग अल्लाह को छोड़कर देवियों को माबूद बनाते हैं, वो उस बागी शैतान को माबूद बनाते हैं जिसको अल्लाह ने लानत जदा किया है। वो इस शैतान की इताअत कर रहे हैं जिसने अल्लाह से कहा था, मैं तेरे बंदों से एक मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूंगा, मैं इन्हें बहकाऊंगा, मैं इन्हें आरजुओं में उलझाऊंगा, मैं इन्हें हुक्म दूंगा और वो मेरे हुक्म से जानवरों के कान फाड़ेंगे, और मैं उन्हें हुक्म दूंगा और वो मेरे हुक्म से खुदाई साख में रद्दो बदल करेंगे। इस शैतान को जिसने अल्लाह की अपना वली और सरपरस बना लिया, वो सरीह नुकसान में पड़ गया। यहाँ शैतान की कार्रवाइयों का तذکرہ है, उसके दावों का तذکرہ है, वो क्या चाह रहा है, वो क्या कहता है कि मैं इस इंसान के औकात में, इसकी मेहनतों में, इसकी कोशिशों में, इसकी काबिलियतों में, इसके माल में, इसके औलाद में से अपना हिस्सा लेकर रहूंगा। इस अपने दुश्मन से हमारा ये मुकाबला है, हमने अपने माल, औलाद और अपनी सलाहियतों में से उसको हिस्सा नहीं देना, और उसकी कोशिश ये है कि मैं इन्हें आरजुओं में उलझाऊं। एक तमन्ना वो अभी पूरी नहीं होती कि दूसरी तमन्ना, और वो तमन्ना पूरी नहीं होती कि फिर तीसरी तमन्ना, एक लामतना ही सिलसिला है और इंसान फिर इस दुनिया में उलझता ही चला जाता है, फिर वो दीन के किसी काम का नहीं रहता। और यहाँ जो उसके कि मैं उन्हें हुक्म दूंगा और वो मेरे हुक्म से जानवरों के कान फाड़ेंगे, ये एक शिर्क और जाहिलियत के दौर का एक कायदा था कि जब ऊंटनी 5 या 10 बच्चे जन्म लेती तो उसके कान फाड़ कर उसे देवता के नाम पर छोड़ देते और उससे काम लेना हराम समझते थे। यानी ऐसे फजूल काम, ऐसे फजूल तोहमात जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका रब की रजा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे कामों को खुशनुमा बना बना कर पेश करूंगा। और दूसरी तरफ हमें इससे ये भी पता चलता है कि कुरान जानवरों के हकूक की भी बात करता है। ये शैतान है जो जानवरों के साथ ज्यादती का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं वो कहता है कि वो मेरे हुक्म से खुदा इंसाफ में रद्दो बदल करेंगे। यानी शैतान इतना जोर आवर है, वो अपने उस वसवसे को हुक्म का दर्जा दे रहा है। यानी है वो वसवसा कर रहा, वो दिलों में वसवसे डाल रहा है, लेकिन बेवकूफ इंसान उसे हुक्म के तौर पर लेता है कि बस जैसे इसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। और वो क्या कह रहा है कि खुदाई साफ में मैं रद्दो बदल कराऊंगा। खुदाई साफ में रद्दो बदल से क्या मुराद है कि इंसान किसी चीज से वो काम ले जिसके लिए अल्लाह ने उसे पैदा नहीं किया, और किसी चीज से वो काम ना ले जिसके लिए अल्लाह ने उसे पैदा किया है। यानी वो सारे काम जो इंसान अपनी और उन चीजों की फितरत के खिलाफ करता है, वो सब खुदाई साफ में रद्दो बदल है। मसलन अमले को में लूट, जब्ते विलादत, मर्दों और औरतों को बांझ बनाना, रहबानियत, तरके दुनिया, औरतों को उन खिदमात से मुनहरिफ करना जो फितरत ने उसके हवाले की हैं, और उन्हें तमद्दुन के उन शोबों में घसीटना जिसके लिए मर्द पैदा किया गया है। इस तरह के बहुत सारे काम जो शैतान के हुक्म पर लोग करते हैं, इंसान करते हैं, यहाँ अल्लाह ताला ने उस एक एक उसकी चाल का जिक्र कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो इन लोगों से वादे करता है और उन्हें उम्मीदें दिलाता है, मगर शैतान के सारे वादे बजुज फरेब के और कुछ नहीं। वो धोखा देता है, वो उस वक्ती मजे का जो लालच देता है, और उसके बाद जो लामतनाही अजाब में उस वक्त वो बरी जिम्मा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उसके सारे वादे जो हैं वो फरेब हैं। इन लोगों का ठिकाना जहन्नुम है, जिससे खलासी की कोई सूरत ये नहीं पाएंगे। इब्नुल कय्यम कहते हैं कि शैतान की एक हैरान कुन चाल है कि वो इंसान के नफ्स को सूंघता है, यहाँ तक कि वो जान लेता है कि वो किस किस्म का इंसान है। जो बाज रहने वाले और कमजोर लोग हैं उनके साथ वो जो मामला करता है कि उनको और सुस्ती का शिकार कर देता है, उन्हें पस्त हिम्मत कर देता है, उन्हें खौफ दिलाता है, काम को बोझिल बनाकर पेश कर देता है ताकि उसे छोड़ना आसान लगे। यानी उस इंसान को वो नेकी छोड़ना आसान लगे, हत्ता कि वो शख्स इस नेकी के काम को बिल्कुल छोड़ देता है या उसमें कोताही और सुस्ती करता है। और जो बहादुर इंसान है उसको वो किस तरह फांसता है, वो कहता है ये जिस चीज का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है ये तो बड़ी मामूली सी है, तुम्हारे लिए तो ये मुनासिब नहीं है, तुम तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी कर सकते हो। लिहाजा एक तरह से हद से तजावुज का वसवसा उसके लिए उसने तैयार किया है, और इंसान वो बड़ा काम तो कर नहीं पाता तो वो उस छोटे काम से भी रह जाता है। तो बहरहाल शैतान की चालों को समझने की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम का ढांचा तैयार किया तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया। इबलीस इसके इर्द गिर्द घूमने लगा और देखने लगा, जब उसने देखा ये अंदर से खोखला है तो उसने कहा कि ये ऐसी मखलूक है जो अपनी ख्वाहिशात पर काबू ना पा सकेगी। यानी उसी वक्त उसने जज कर लिया कि इसको ख्वाहिशात के रस्ते से भटकाया जा सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अंजामे का ना तुम्हारी आरजुओं पे मौकूफ है ना अहले किताब की आरजुओं पर, जो भी बुराई करेगा इसका फल पाएगा और अल्लाह के मुकाबले में अपने लिए कोई हामी और मददगार ना पा सकेगा। और जो नेक अमल करे ख्वा मर्द हो या औरत, बशर्ते के हो वो मोमिन, तो ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनके जर्रा बराबर हक तलफी ना होने पाएगी। उस शख्स से बेहतर और किसका तरीके जिंदगी हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर दिया, अपना रवैया नेक रखा और यकसू होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी की, उस इब्राहिम के तरीके की जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया था। आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है और अल्लाह हर चीज पर मुहीत है। लोग तुमसे औरतों के मामले में फतवा पूछते हैं, कहो अल्लाह तुम्हें उनके मामले में फतवा देता है और साथ ही वो अहकाम भी याद दिलाता है जो पहले से तुमको इस किताब में सुनाए जा रहे हैं। यानी वो अहकाम जो उन यतीम लड़कियों के मुतालिक हैं जिनके तुम हक अदा नहीं करते और जिनके निकाह करने से तुम बाज रहते हो, या लालच की बिना पर तुम खुद उनसे निकाह कर लेना चाहते हो, और वो अहकाम जो उन बच्चों के मुतालिक हैं जो बेचारे कोई जोर नहीं रखते, अल्लाह तुम्हें हदायत करता है कि यतीमों के साथ इंसाफ पर कायम रहो, और जो भलाई तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म से छुपी ना रह जाएगी। जब किसी औरत को अपने शौहर से बदसलूकी या बेरुखी का खतरा हो तो कोई मजायका नहीं अगर मियाँ और बीवी कुछ हकूक की कमी बेशी पर आपस में सुलह कर लें। सुलह बहरहाल बेहतर है, सुलह बेहतर है क्योंकि शैतान अपने कारिंदों में से उस कारिंदे को अपने करीब करके शाबाश देता है जो मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी करवा दे। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सुलह बहरहाल बेहतर है, नफ्स तंग दिली की तरफ जल्द माइल हो जाते हैं। यानी अगर इंसान अपने नफ्स के मुताबिक मामला करे, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी पसंद क्या है, मेरा ये हक और मेरा वो हक या उसका ये फर्ज, अगर इस तरह की बहस में इंसान पड़ जाए तो फिर मामलात नहीं चल सकते। हमें मामलात करते वक्त दो असूल कुरान ने बताए हैं, एक तकवा और एक एहसान। यानी अल्लाह से डर कर मामला करो और हक से ज्यादा देने की कोशिश करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम एहसान से पेश आओ और खुदा तरसी से काम लो तो यकीन रखो अल्लाह तुम्हारे इस तर्ज अमल से बेखबर नहीं होगा। बीवियों के दरमियान पूरा पूरा अदल करना तुम्हारे बस में नहीं है, तुम चाहो भी तो इस पर कादिर नहीं हो सकते। लिहाजा कानून इलाही का मंशा पूरा करने के लिए काफी है कि एक बीवी की तरफ इस तरह ना झुक जाओ कि दूसरी को उधर लटकता छोड़ दो। यानी इस आयत में ये बहरहाल इस चीज का हमें पता चल रहा है, जो पहले इस सूरत के शुरू में एक से जायद निकाह की इजाजत दी और कहा अदल की शर्त अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखी, और यहाँ पर उस कानून को मजीद अल्लाह ताला वाजे कर रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा बीवियों के दरमियान हर लिहाज से मसावात बरतना ये इंसान इस पर कादिर नहीं हो सकता। अगर दो बीवियां हैं, दोनों में फर्क हो सकता है, खूबसूरत हो सकती है दूसरी जरा उससे कम दर्जे की हो सकती है, एक जवान हो सकती है दूसरी थोड़ी सी उम्र की ज्यादा भी हो सकती है, एक बीमार हो सकती है दूसरी सेहतमंद, या एक खुश अखलाक है दूसरी बदमिजाज है। तो बहरहाल अगर ऐसी सूरत में मर्द का मैलान एक तरफ ज्यादा और दूसरी तरफ कम हो तो ये एक फितरी अमल है जिस पर वो कोशिश भी करे तो वो काबू नहीं पा सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों में वक्त, खाने, सोने, बैठने, खाना, कपड़ा, इन सारी चीजों में बहुत मसावात किया करते थे, लेकिन फरमाया करते थे, या अल्लाह ये मेरी बीवियों के दरमियान उस चीज की तकसीम है जिसका मैं इख्तियार रखता हूँ, लिहाजा तू मुझे उस चीज पर मलामत ना फरमा जिसका मैं इख्तियार नहीं रखता। यानी मेरा दिली मिलान और मोहब्बत अगर किसी बीवी की तरफ ज्यादा है परवरदिगार इसका हिसाब ना लेना। जिसकी दो बीवियां हो और वो इनमें से एक की तरफ झुकाव रखे तो कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका एक पहलू झुका हुआ होगा। यानी वो मसावात जो आप कर सकते हैं, अगर आप उसमें जानबूझ के एक बीवी को लटकता छोड़ देते हैं और सारे का सारा ही दूसरी की तरफ झुक जाते हैं, तो ये उस मसावात की बात है कि उसमें अगर मसावात ना करे तो कयामत के दिन वो ऐसे आएगा कि उसका एक पहलू झुका हुआ होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम अपना तर्ज अमल दुरुस्त रखो और अल्लाह से डरते रहो तो अल्लाह चशम पोशी करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लेकिन अगर जोजैन एक दूसरे से अलग ही हो जाएं तो अल्लाह अपनी वसी कुदरत से हर एक को दूसरे की मोहताजी से बेनियाज कर देगा। अल्लाह का दामन बहुत कुशादा है और वो दाना बीना है। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। तुमसे पहले जिनको हमने किताब दी थी उन्हें भी यही हदायत की थी, और अब तुमको भी यही हदायत करते हैं कि खुदा से डरते हुए काम करो, लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो ना मानो। आसमान और जमीन की सारी चीजों का मालिक अल्लाह ही है और वो बेनियाज है, हर तारीफ का मुस्तहिक। हाँ, अल्लाह ही मालिक है उन सब चीजों का जो आसमानों में है और जो जमीन में है, और कारसाजी के लिए बस वही काफी है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को हटा के तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए, और वो इस पर पूरी कुदरत रखता है। यानी अल्लाह का नुकसान नहीं है ये, नुकसान अल्लाह ना करे अगर अल्लाह हमें हटाकर किसी और से इस दीन का काम ले ले तो ये नुकसान मेरा और आपका नुकसान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीसे कुदसी है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन सब के सब बहुत ज्यादा मुत्तकी आदमी के दिल की तरह हो जाएं तो उससे मेरी सल्तनत में कुछ इजाफा नहीं होगा। और ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले और पिछले इंसान और जिन सब के सब बदबख्त या बुरे आदमी की तरह हो जाएं तो भी उसकी सल्तनत में कोई कमी वाकई नहीं होगी। और अगर तुम सब अगले पिछले इंसान और जिन सब के सब एक मैदान में खड़े होकर भी मुझसे मांगे और मैं हर एक को उसकी मतलूबा चीज दे दूं, तो जो कुछ मेरे पास है इसमें कोई कमी नहीं आएगी मगर इतनी जितनी सुई को समुंदर में डुबोने से आती है। ये मुस्लिम की हदीस का मफहूम है। तो अल्लाह तो बड़े फजल वाला है, अल्लाह की तो बादशाहत कायम दाइम है। अल्लाह मेरा और आपका मोहताज नहीं है, मुझे और आपको अल्लाह की और उसके दीन की जरूरत है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ना बदलना, हमें छोड़कर दूसरों से काम ना लेना। परवरदिगार तू हमें अपने दीन की खिदमत का मौका दे दे, तू हमें अपने दीन पर चलने वाला बना दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स महज सवाबे दुनिया का तालिब हो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के पास सवाबे दुनिया भी है और सवाबे आखरत भी, और अल्लाह समी और बसीर है। यानी यहाँ आखिर में अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह के पास तो दुनिया भी है और आखिरत भी, दोनों चीजें हैं, दोनों मांगी है अल्लाह से। लेकिन ये फिर इंसान की कमजरफी है कि वो सिर्फ अल्लाह से दुनिया ही मांगता है, और जो दुनिया मांगता है अल्लाह उसको दुनिया दे देते हैं, और जो दुनिया और आखिरत दोनों तलब करता है तो अल्लाह ताला उसको दोनों अता करने पर कुदरत रखते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इंसाफ के अलम बरदार और खुदा वास्ते के गवाह बनो, अगरचे तुम्हारे इंसाफ और तुम्हारी गवाही की जद खुद तुम्हारी अपनी जात पर या तुम्हारे वालदैन और रिश्तेदारों ही पर क्यों ना पड़ती हो। यानी यहाँ अल्लाह ताला क्या सिखा रहे हैं कि अपनी जिंदगी में भी अदल कायम करना है और माशरे में भी अदल कायम करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरीके मामला ख्वाह मालदार हो या गरीब, अल्लाह तुमसे ज्यादा उनका खैर ख्वाह है। लिहाजा अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में अदल से बाज ना रहो। अगर तुमने लगी लिपटी बात कही या सच्चाई से पहलू बचाया तो जान रखो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को इसकी खबर है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है। यहाँ ईमान लाने वालों से तकाजा किया जा रहा है कि ईमान लाओ। इसका क्या मतलब है? यानी वो लोग जो ईमान का दावा करते हो, उस ईमान को, ईमान के दावे को सच कर दिखाओ। ऐसा ईमान जो दिल बदल दे, ऐसा ईमान जो अमल बदल दे, ऐसा ईमान जो अल्लाह और उसके रसूल और उसकी किताब के मुताबिक हो, उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक हो, वो ईमान ला के दिखाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर उस किताब पर जो उससे पहले वो नाजिल कर चुका है, जिसने अल्लाह और उसके मलाइका और उसकी किताबों और उसके रसूलों और रोजे आखरत से कुफर किया, वो गुमराही में भटक कर बहुत दूर निकल गया। रहे वो लोग जो ईमान लाए फिर कुफर किया, फिर ईमान लाए फिर कुफर किया, फिर अपने कुफर में भरते चले गए। ईमान ना हो गया, बिजली की लोड शेडिंग हो गई कि इधर बिजली आई और चली गई, फिर आई और फिर चली गई, फिर आई और फिर चली गई। इधर इधर ईमान लाए फिर कुफर किया, फिर ईमान लाए फिर कुफर किया। जहां फायदा नजर आया वहां चले गए, जहां मजा नजर आया वहां उठ के चले गए, जहां जरा थोड़ा सा माहौल हुआ वहां नेक बन गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को हरगिज माफ ना करेगा, ना कभी उनको राह रास्त दिखाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुनाफिक की मिसाल बकरियों के दो गल्लों के दरमियान फिरने वाली बकरी की है, जो कभी इस गल्ले में जाती है और कभी उस गल्ले में। तो नुकसान तो उसका अपना होगा ना, ना इधर के रहे ना उधर के, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मुनाफिक अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक बनाते हैं, उन्हें ये मुजदा सुना दो कि उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। क्या ये लोग इज्जत की तलब में उनके पास जाते हैं? हालांकि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है, जहां तक तुम सुनो, जहां तुम सुनो कि अल्लाह की आयात के खिलाफ कुफर बका जा रहा है और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, वहां ना बैठो। ऐसी जगह, ऐसी महफिलें, ऐसे लोग जहां अल्लाह के हुक्मों का मजाक उड़ाया जा रहा हो, जहां अल्लाह की आयात के खिलाफ बातें की जा रही हो, वहां ना बैठो। यहाँ और जब तक के लोग किसी दूसरी बात में ना लग जाएं, यानी ऐसा ना हो कि वो लोग जो रब को नाराज कर रहे हैं, अल्लाह के कानून की धुजियां बखेर रहे हैं, अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के कानून के खिलाफ बातें कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह का अजाब आ जाए तो हम उन लोगों में शामिल ना हो, वहां ना बैठो। और जब तक कि लोग किसी दूसरी बात में ना लग जाएं, अब अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भी उन्हीं की तरह हो। यानी अगर एक शख्स इस्लाम का दावा भी रखे और काफिरों की सोहबतों में शरीक भी होता हो और ठंडे दिल से उन लोगों को अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाते हुए सुनता हो तो उसमें और फिर इन काफिरों में क्या फर्क बाकी रह जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं, तुम भी फिर इन्हीं की तरह हो, यकीन जानो कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नुम में एक जगह जमा करने वाला है। ये मुनाफिक तुम्हारे मामले में इंतजार कर रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अगर अल्लाह की तरफ से फतह तुम्हारी हुई तो आकर कहेंगे, क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? और अगर काफिरों का पल्ला भारी रहा तो उनसे कहेंगे, क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादिर ना थे? फिर भी हमने तुमको मुसलमानों से बचाया। बस अल्लाह ही तुम्हारे और इनके दरमियान फैसला कयामत के रोज करेगा, और इस फैसले में अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की हरगिज कोई सबील नहीं रखी है। ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हालांकि दरहकीकत अल्लाह ही ने इन्हें धोखे में डाल रखा है। जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो कसम साधते हुए महज लोगों को दिखाने की खातिर उठते हैं और खुदा को कम ही याद करते हैं। ये कौन है जो बेदिली से नमाज के लिए उठ रहा है? ये कौन है जो नमाज पढ़ रहा है लेकिन अल्लाह को कम याद कर रहा है? कहीं ये मेरी और आपकी नमाज का जिक्र तो नहीं हो रहा? ये तो मुनाफिक की नमाज का जिक्र है। और प्यारे नबी के दौर में तो मस्जिद में हाजिर होना मुनाफिक भी जरूरी ख्याल करते थे, और आज के दौर में मस्जिद की हाजिरी तो दरकिनार। लोग सिरे से नमाज नहीं पढ़ते लेकिन अपने आप को मुसलमान समझते भी हैं, और बल्कि मुसलमानों का लीडर बनाए जाने के लिए भी ये बात जरूरी नहीं रही कि कोई नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, इसकी परवाह नहीं की जाती। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वो कुफ्र और ईमान के दरमियान डावाडोल है, ना पूरे इस तरफ है ना पूरे उस तरफ। जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो इसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। और प्यारे नबी फरमाते हैं, तुम कयामत के दिन बदतर उस शख्स को देखोगे जो दो रुखा होगा, उनके पास आएगा तो उनकी सी कहेगा और इनके पास जाएगा तो इनकी सी कहेगा। ये बुखारी की हदीस है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लोगों जो ईमान लाए हो, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को तुम अपने खिलाफ सरी हुज्जत दे दो? यानी जिस तरह के लोगों में इंसान उठता बैठता है वो आदमी के जौक और उसकी दिलचस्पी को जाहिर करती है चीज, उसकी सोहबतें बताती हैं कि उसकी पसंद और नापसंद क्या है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि उस दिन जालिम अपना हाथ चबा जाएगा कि काश मैंने रसूल का साथ दिया होता और काश मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता, कि उसके कहने पर आज मैंने बुरे काम किए और आज मैं जहन्नुम का मुस्तहिक हो गया। अल्लाह ताला कह रहे हैं, यकीन जानो मुनाफिक जहन्नुम के सबसे नीचे तबके में जाएंगे। यह मुनाफिकीन की खसूसियात है कि वो नमाज बेदिली से पढ़ते हैं, वो नमाजों में कम ही अल्लाह को याद करते हैं, वो ईमान वालों से भी मिलते हैं, उन्होंने काफिरों से भी दोस्तियां रखी हुई हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जिस तरह जन्नत के बहुत सारे दर्जे हैं, इस तरह जहन्नुम के भी दर्जे हैं, और मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में, जहाँ सबसे ज्यादा आग भड़क रही होगी वहां पर होंगे। कुफार से भी नीचे, इन्नल मुनाफिकीन फिद दरकिल असफली मिनन नार, निफाक से डरना चाहिए। हजरत जुबैर फरमाते हैं कि मैं हम्स में अबू दरदा के घर गया, वो नमाज पढ़ रहे थे, जब वो तशहद में बैठे तो निफाक से अल्लाह अज़्ज़ा वजल की पनाह मांगने लगे। जब उन्होंने सलाम फेरा तो मैंने इनसे कहा, ए अबू दरदा, अल्लाह आपको माफ फरमाए, आपका निफाक से क्या ताल्लुक? उन्होंने 3 मरतबा फरमाया, अल्लाहुम्मा गुफरा, अल्लाहुम्मा गुफरा, और फरमाया, जो मुसीबत से बेखौफ होता है उसको मुसीबत से तहफ्फुज़ हासिल नहीं होता। अल्लाह की कसम, एक आदमी एक ही घड़ी में फितने में डाल दिया जाता है और वो अपने दीन से फिर जाता है। दीन से फिरते देर नहीं लगती, निफाक पैदा होते देर नहीं लगती। ईमान की फिक्र करें, निफाक की मुसीबत का खौफ रखें, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गई। अपनी दिलचस्पियों का, अपनी चाहतों का जायजा लें, अपनी रूटीन का जायजा लें। जो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने निफाक की निशानियां बताई हैं, जो बात करे और तो झूठ बोले, जब अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, जब किसी से मामला करे तो बदसलूकी पे उतर आए। मेरे अंदर क्या ये सिफात तो नहीं है? मैं नमाज को टाल के तो नहीं पढ़ती? मैं नमाज में अल्लाह को कम ही याद करती हूँ? अल्लाह से डरना चाहिए, निफाक से डरना चाहिए। ईमान की कदर करें, ईमान की हिफाजत करने वाले हों। इब्ने अबी मुलैका ताबई हैं, कहते हैं, मैं 30 सहाबा से मिला हूँ और उनमें से हर एक को अपने बारे में निफाक का डर लगा हुआ था। हजरत हंजला जब दिल घर जाते हैं, महसूस करते हैं कि वो कैफियत नहीं है जो प्यारे नबी की महफिल में होती थी, तड़प उठते हैं, कहते हैं, हंजला तो मुनाफिक हो गया। और ये बात कहते कहते बाहर आ जाते हैं। हजरत अबू बकर और उमर मिलते हैं, वो कहते हैं कि क्या मामला है, उन्हें बताते हैं तो वो कहते हैं, हमारे साथ भी यही मामला। यानी नबी की महफिल में होते हैं तो ईमान की कैफियत कुछ और होती है, घर में जाते हैं और ईमान की कैफियत कुछ और होती है। इसका मतलब है कि ईमान को बढ़ाना है तो कुरान की और हदीस की महफिलों में शिरकत करें, इल्म वालों के साथ बैठें, सुनने का जौक और जज्बा पैदा करे। कुरान का मिजाज है सुनने का, क्योंकि कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, लिखी हुई किताब की शक्ल में नहीं आया। हजरत जिब्राइल ने सुनाया, आपने आके सहाबा को सुनाया। आज अल्लाह ने हमें कुरान सुनने की तौफीक दी है, इस पर शुक्र अदा करें। हमें आज वक्त निकालना मुश्किल लग रहा है, ये सुनना हमारे कानों को गिरा गुजर रहा है, इस सुनने पर शुक्र अदा करें। क्यामत के दिन हमें हसरत ना हो, हम उन लोगों में शामिल ना हो जो ये कह रहे हो, वकालू लव कुन्ना नस्मा व नाकिल मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, काश हम सुनते या समझते तो हम आज दोजख के सजावारों में शामिल ना होते। तो आज अपने आप को सुनने वालों में शामिल कर लें, समझने वालों में शामिल कर लें, इसलाह करने वाले और पलटने वालों में शामिल कर लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम किसी को उनका मददगार ना पाओगे, अलबत्ता जो उनमें से ताइब हो जाए और अपने तर्ज अमल की इसलाह कर ले और अल्लाह का दामन थाम ले और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर दे। मेरी सारी दिलचस्पी, मेरी मोहब्बतें, मेरी अकीदतें सिर्फ अल्लाह के लिए, परवरदिगार तुझे राजी करना चाहते हैं, ये रोजा तुझे राजी करने के लिए रख रहे हैं, ये पढ़ना पढ़ाना परवरदिगार तेरी खातिर तुझे खुश करना चाहते हैं। अल्लाह को अमल वही पसंद है जो खालिस उसके लिए हो, और जिस तरह पानी के अंदर गंदगी का एक कतरा भी गिर जाए तो सारा पानी जाया हो जाता है, इसी तरह अगर अल्लाह को राजी ना किया, अगर अल्लाह को नाराज कर लिया तो सारी जिंदगी की नेकियां गारत हो सकती हैं। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोग मोमिनों के साथ हैं, अल्लाह मोमिनों को जरूर अजर अजीम अता फरमाएंगे। आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें खामखा सजा दे, अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और ईमान की रविश पर चलो, अल्लाह बड़ा कदरदान है और सबके हाल से वाकिफ है। परवरदिगार तू हमें पलटने वाला बना दे, परवरदिगार तू हमें शुक्र करने वाला बना दे, परवरदिगार तू हमें ईमान की रविश पर चलने वाला बना दे, परवरदिगार हमारी इन छोटी छोटी नेकियों की कदर फरमा, परवरदिगार इस कुरान को इस जिंदगी में हमारा साथी बनाए रख, अल्लाह इस कुरान को कब्र में भी हमारा साथी बनाना, अल्लाह इसको रोजे महशर भी हमारा साथी बनाना, हमारे हक में हुज्जत देने वाला बनाना। परवरदिगार हमें कयामत के दिन प्यारे नबी के सामने शर्मिंदा ना करना, हमें अपने असातिज़ा के सामने, हमें अपने शागिर्दों के सामने परवरदिगार उस दिन शर्मिंदा ना करना, हमारे पोल ना खोलना, परवरदिगार हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल देना, हमें माफ़ फरमा दे। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत्तवाबुर रहीम।